अध्याय द्वितीय श्लोक संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवाणिकं बूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यं उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवाणिकं बूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यं उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। दृष्ट्वा तु
हर शाम को भगवद गीता का एक एक श्लोक पाठ करते हैं और उसके विचार करते हैं, श्लोक का अर्थ या तात्पर्य। और ये हम कोशिश करते हैं कि हर रोज एक श्लोक को कंठस्थ भी करना, उसको हम याद करने का, कंठस्थ करने का कोशिश करते हैं। करने से अच्छा होगा, हाँ, तो कोशिश करना पड़ेगा। कोशिश करते बिना क्या हम कोई कार्य साधन कर सकते हैं? तो ऐसे कैसे हम एक श्लोक, जैसे ये श्लोक है आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस श्लोक के, इस श्लोक को हम कैसे कंठस्थ कर सकते हैं, कोशिश करेंगे। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये श्लोक का अर्थ क्या है उसको विचार करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। संजय उवाच का मतलब क्या होता है? संजय ने कहा, उवाच का मतलब है कहा था। संजय ने कहा, दृष्ट्वा का मतलब क्या है? देखकर। दृष्ट्वा देखकर, तू, तू का मतलब है लेकिन। पांडवा अनिकम, पांडवा अनिकम, पांडवा अनिकम का मतलब होता है अनेक का, मतलब पांडव है पांडु का पांच पुत्र, और अनेक का मतलब है सेना को। पांडवानी का, पांडव को, सेना को दर्शन करके, दृष्ट्वा तु पांडवानी का, पांडव को, सैन्य को देखकर, पांडव को, सेनाओं को देखकर। बूढ़म, बूढ़म का मतलब है बूढ़ा रचना। जब युद्ध होता है तो सैन्यों का जो सजावट, उसे क्या कहा जाता है? बूढ़ा, बूढ़ा। और दुर्योधन, राजा दुर्योधन ने, दुर्योधन कौन था? धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र था। धृतराष्ट्र का 100 पुत्र था, उनमें से ज्येष्ठ था दुर्योधन। तदा, तदा का मतलब है उस समय, अर्थात बूढ़ा दुर्योधनस तदा। उस समय ये पांडवों का जो सैन्य का जो सजावट, बूढ़ा ब्यूढ़ा, ये देखकर दुर्योधन ने कहा। दुर्योधन क्या किया? आचार्य उपसंगम किया। आचार्य मतलब गुरु। तो यहाँ दुर्योधन का गुरु कौन है, कौन था? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने उनको युद्ध विद्या या अस्त्र शास्त्र को शिक्षा दिया था। आचार्य उपसंगम्य राजा, राजा का मतलब दुर्योधन। उपसंगम्य मतलब पास जाकर, द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने राजा वचनम अब्रवीत, राजा ने ये, दुर्योधन ने ये बोला था, ये कहा, ये वचनम, वचनम का मतलब शब्द या कथा, ये बोले थे, बोला था, कहा। अच्छा संजय ने कहा, संजय उवाच, संजय ने कहा हे राजन, किसको संजय किसको संबोधन कर रहा है यहाँ? धृतराष्ट्र को संबोधन कर रहा है। तो हे राजन, क्योंकि धृतराष्ट्र ने उससे कुछ पूछा था पहले, क्या पूछा था? धृतराष्ट्र ने पूछा था धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युजुत्सव मामका पांडव शैव की अपूर्वत संजय। संजय को धृतराष्ट्र ने पूछा, मेरे पुत्र और पांडवों का, पांडु का पुत्र ने लड़ाई करने के लिए जो धर्म क्षेत्र में समवेत हुआ है, समवेत होकर उन्होंने किंग अपूर्वत संजय, किंग का मतलब है क्या और अपूर्वत का मतलब है किया था, ये अतीत काल में है। तो उसके उत्तर देते हुए, उन प्रश्न का उत्तर देते हुए संजय ने यहां कह रहा है, संजय ने कहा हे राजन, पांडु पुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो आप ये श्लोक का कंठस्थ करने का कोशिश हम करेंगे। कंठस्थ शब्द मेमोराइज का हिंदी क्या होता है? याद करना और स्मरण करना। अच्छा, संस्कृत में इसको कंठस्थ कहा जाता है क्योंकि कंठ में उसको धारण करना। तो हम स्मरण करने का या याद करने का कोशिश करेंगे हम। दृष्टा, वेरी गुड। अच्छा, ये दृष्टा याद होते ही पूरा ये लाइन का याद किसको, याद किसको आ रहा है? हाथ उठाए। अच्छा, ओके, कोमल, वेरी गुड। अच्छा, अब सेकेंड लाइन का फर्स्ट वर्ड क्या है? हाँ, तो बाकी लाइन किसको याद है? अच्छा, आप बता दिए हैं। अच्छा, ठीक है। तीसरा लाइन का पहला शब्द क्या है? आचार्यम, आचार्यम स्मरण होते ही आप बताइए बाकी लाइन। आचार्यम उपसंगम्य, बहुत अच्छा। और चौथा लाइन का पहला शब्द क्या है? अच्छा, को किसको याद पड़ गया पूरा लाइन का? हाथ उठाइए किसका याद आया है। अच्छा, बहुत अच्छा, आप बताइए। राजा वचनम अब्रवीत, बहुत अच्छा। तो कितना आसानी से स्मरण हो गए हैं, कितना आसानी से कंठस्थ हो गए हैं। अब पूरा श्लोक का, अच्छा पहला दो लाइन का याद कौन कर सकते हैं? अच्छा, जिसको पहले से याद है, वाले तुमको याद है पहला दो लाइन है? कोशिश करोगे? माता जी, आपको पहले से याद था या अब आप याद किया? कौन है, किसने अब अभी अभी याद किया है? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप तो पहले से कर लिए हैं, आप तो बहुत ही एडवांस है, बहुत आगे बढ़ गए हैं। ओके, बहुत अच्छा। अच्छा, कौन किसको अभी आज ही याद आया, याद किया, आप बताइए पूरा लाइन, दो लाइन। अच्छा, बताइए पहला शब्द क्या है इस लाइन, बताइए बाकी। दृष्ट पांडवानी का, उसके बाद बूढ़न दुर्योधन सदा। अच्छा, साथ साथ बोलिए, आप बताइए क्या क्या। अच्छा, दृष्ट्वा तु पांडवानिकं बूढ़ं दुर्योधनस्तदा, अब बताइए तीन बार, मैं एक बार बोला आप तीन बार बोलेंगे।
आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवी ये बच्चे लोग बहुत सुंदर कर रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है अपूर्व अपूर्व बहुत अच्छा तुम्हारा चिराग चिराग और ओके तुम्हारा भी चिराग अच्छा और तुम्हारा रोहित तो ये पूरा श्लोक तुमको याद आ गया है अच्छा कल घर में जाकर थोड़ा कोशिश करना और कल तुम सब सुनाएंगे हम कैसे तुम याद किया ठीक है चिराग तुम उस तरफ क्यों देख रहे ये चिराग तो अब तुमके बराबर वहां भी देख रहे ओके तो अब थोड़ा सा कोशिश करने से याद आ जाए वैसे हर रोज अगर हम एक श्लोक गीता का कंसस करेंगे तो अच्छा होगा ना माता जी आपका कितना समय लगा 15 अध्याय सारा नहीं आप कितना टाइम लगा आपको याद करने में बचपन से किए थे अपने आप तो नहीं होता है आसानी से हो सकता है क्योंकि अपने आप नहीं होता तो ये श्लोक का अर्थ पता चल गया है दृष्ट्वा तु पांडवानिकं बूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यं उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत संजय ने कहा हे राजन पांडु पुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे इसके तात्पर्य अर्थात इस श्लोक की व्याख्या हमारे गुरु जी श्री प्रभुपाद जी ने किए हैं वो हम अब पढ़ रहे हैं धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था वो केवल आंखों से ही अंधा नहीं था परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ही वो वंचित था वो ये भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंध है और उसे विश्वास था कि वे पांडव के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे धृतराष्ट्र का पुत्र ने पापी थे सारे 100 पुत्र था पापी महापापी था और वो अधार्मिक था और पांडु का जो पुत्र पांच पुत्र उनके उनसे संपूर्ण विपरीत उसका प्रकृति था विपरीत प्रकृति के था जैसे पांडु का पुत्र ना कैसा था बहुत धार्मिक था और वो बहुत पुण्यवान था पवित्र था तो धृतराष्ट्र का मालूम था कि समझौता वो दोनों के बीच में नहीं होगा जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जो दूसरे भिन्न प्रकृति के जो होते हैं उसके बीच क्या समझौता हो सकता है भला के साथ बुरा का समझौता कभी हो सकता है पापी के साथ पुण्यवान के कभी समझौता हो सकता है नहीं क्योंकि दोनों का वृत्ति जो है आचरण जो है प्रकृति जो है बिल्कुल भिन्न है तो उसे मालूम था कि ये लड़ाई जो होने के लिए समवेत हुआ है ये लड़ाई होना होगा ही और फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था ये कुरुक्षेत्र जो है ये तीर्थ स्थान है बहुत पवित्र स्थान और इसीलिए धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र को क्या बताया किस रूप से बताया वर्णन किया धर्म क्षेत्र धर्म का क्षेत्र
कि ये पवित्र धर्म क्षेत्र में जो लड़ाई होने वाला है उसका फल कैसे होगा, कैसा होगा, जो पुण्यवान है उसके पुण्य के कारण स्वरूप उसका पुरस्कार मिलेगा और जो पापी है उसको दंड मिलेगा, सजा मिलेगा। तो इसके इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा, धृतराष्ट्र का जो पुत्र है दुर्योधन आदि कौरव का पराजय होगा और पांडु का पुत्र का विजय होगा। इसके कारण धृतराष्ट्र के मन में शंका पड़ा, अतः वो निराश राजा को, अच्छा इसलिए संजय युद्ध भूमि के स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वो निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करते नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसको पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत करने गया। शंका हुआ, भय हुआ, दुर्योधन का सैन्य बल पांडव से और भी बहुत अधिक था, परंतु दुर्योधन का मन में ये पांडव का व्यूह रचना देखकर शंका हो रहा है, डर हो रहा है। क्यों, असल में डर क्यों हो रहा है, डर ये इसलिए हो रहा है कि ये पवित्र स्थान तीर्थ स्थान धर्म क्षेत्र का प्रभाव अब होगा, ये उसका पाप कर्म का फल अब उसको मिलेगा और पांडवों का जो धर्म धार्मिक आचरण था उसका फल भी उसको वो मिलने वाला है। तो ये भगवत गीता के प्रारंभ है, इसका वर्णन किया गया है कैसे जब लड़ाई जब शुरू होने वाला है तब क्या हो रहा था, और ऐसे धीरे धीरे हम देखेंगे कि अर्जुन ने ये युद्ध नहीं चाहा, ये लड़ाई वो करना नहीं चाहा, क्योंकि जब देखा कि उनकी विपक्ष में उनके सारे रिश्तेदार, सारे बंधु, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, ये सब उनके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हुए। और इस लड़ाई का मतलब क्या था, ये लड़ाई का मतलब था अर्जुन सबको हत्या करना पड़ेगा। जो क्षत्रिय होता था वो मरने से डरता नहीं था, मृत्यु भय उनका नहीं था, वो केवल लड़ाई, वो जब रण क्षेत्र में जाता था तो वो सोचता है कि इन सबको आपको हत्या करना पड़ेगा। तो अर्जुन को जब ऐसा मालूम हुआ कि इन सबको हत्या करना पड़ेगा तो अर्जुन बहुत मोहग्रस्त हो गया था, कैसे मैं अपने रिश्तेदार को, अपने बंधु को, अपने गुरु को अब हत्या करूं, और वो भी राज्य लाभ करने। तो सोचे ये राज्य लेकर मेरा क्या फायदा हो, इनसे इन सबसे खून, इन सबके खून से जो राज्य वो लेकर मैं क्या। तो उसके कारण अर्जुन ये लड़ाई करने से इनकार कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया क्यों ये लड़ाई जरूरी है, ये लड़ाई करना क्यों जरूरी है। ऐसे उन्हें अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और युद्ध करने में प्रोत्साहित किया था। ये जो ज्ञान भगवान इस अध्याय में दिए हैं महाभारत के इस अध्याय में, वो हमारे समक्ष गीता के रूप में
विराजमान है। भगवद गीता स्वयं भगवान के द्वारा दिए गए निर्देश, जहाँ भगवान अपने बारे में बताए हैं वो कौन है, उनके साथ हमारा संपर्क है, कैसे हम उनके साथ हमारे संपर्क जोड़ सकते, संपर्क स्थापन कर सकते, इसके निर्देश, इसके उपदेश भगवान अर्जुन के माध्यम भगवद गीता में हम सबको दिए हैं। हम देखते हैं कैसे दोनों पक्ष का समावेश हुआ है लड़ाई करने के समय, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बना। भगवान ने वादा किया था कि इस लड़ाई में वो नहीं लड़ाई करेंगे, भगवान नहीं लड़ेंगे किसी पक्ष में। भगवान संपूर्ण रूप से निरपेक्ष ने अस्त्र धारण करने नहीं, अस्त्र धारण न करने का प्रतिज्ञा किया था उस लड़ाई, और अर्जुन का रक्षकर्ता के रूप में भगवान बार बार अर्जुन को रक्षा किया। केवल अर्जुन ही नहीं, उनके सारे पांच पांडवों को भगवान रक्षा किया, और ये लड़ाई के समय भगवान उपदेश अर्जुन को देते रहे थे कैसे लड़ाई करना चाहिए। तो इस दृष्टांत से हमें ये पता चलता है कि जब हम भगवान को भक्त बनते हैं, जब हम केवल भगवान को ही सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान हमारे पक्ष लेकर हमें बार बार रक्षा तो करते ही है, परंतु हमारा सेवा का जितने सारे सहयोग, जितने सारे वस्तु का प्रयोजन होता है, भगवान वो सारे को बंदोबस्त करते हैं। ऐसे भगवद गीता पाठ करने से विश्वास आ जाता है। पहले तो बात यह है कि भगवान है और वो है स्वयं कृष्ण, कृष्ण ही भगवान, भगवान एक ही है, एकम एव अद्वितीय, एक ही व्यक्ति है, एक ही पुरुष, वो है परम पुरुष। और वो परम पुरुष का दो तरीके का विस्तार होता है, एक दो ढंग से, एक भगवान दो रूप से अपने आप को विस्तार करते हैं, एक है स्वांश और दूसरा है विभिन्नांश। स्वांश जो है वो भगवान खुद अपने आप को विस्तार कर रहे हैं, जैसे नारायण, राम, श्री रामचंद्र, वराहदेव, नृसिंहदेव, कूर्म, अनंत शेष, ये सब भगवान का ही विस्तार है, वो सब भगवान है, उन दोनों में कोई फर्क, कोई अंतर नहीं है, जैसे कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं, एक ही व्यक्ति। जैसे एक व्यक्ति भिन्न स्थान में रह जा सकते हैं और वहां उनको परिचय भी भिन्न रूप का हो सकता है, जैसे जो हाई कोर्ट का जज है, कोर्ट में उसको कैसे बुलाया जाता है, संबोधन किया जाता है, और कैसे देखते हैं कोर्ट में जज के रूप में देखते, है ना। और जब वही व्यक्ति जब क्लब में जाता है अपना, तब वहां उनको किस रूप से देखते हैं, उनके दोस्त के, एक दोस्त के रूप में उनके और जो दोस्त हैं वो देखते हैं। और जो आप जब वो अपना घर में आता है, तब उनका घर में कोई उनको अपना पति के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई अपना लड़का का रूप में, व्यक्ति एक ही है, हाईकोर्ट में एक रूप से उनको, एक भांति उनको दिखाई देता है, क्लब में और दूसरे भांति, घर में और किसी रूप में। तो ऐसे ही भगवान जब अपने आप को भिन्न भिन्न स्वाम स्वरूप में, स्व अंश रूप में विस्तार करते हैं, तो एक ही भगवान ही भिन्न रूप में, उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे रामचंद्र कृष्णचंद्र में अंतर क्या है, एक तो है लीला का अंतर, रामचंद्र का जो लीला है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, और कृष्णचंद्र के रूप में जो लीला है वो है लीला पुरुषोत्तम के रूप में।
श्री कृष्ण है, लीला पुरुषोत्तम और रामचंद्र है मर्यादा पुरुषोत्तम। और अंतर क्या है? श्री रामचंद्र का अंग कांति है दुर्वा दल श्याम, दुर्वा के जैसे हरा रंग होता है, रामचंद्र का रंग हरा है और कृष्ण का वर्ण कैसा है? घश्याम। वर्ण का अंतर है परंतु शकल एकदम बिल्कुल एक। रामचंद्र को अगर हम घनश्याम रूप में पेंट किया और सर पे मयूर का पंख लगा दिया, क्या बोले, मुकुट नहीं मयूर का जो एक बताइए, मोर पंख लगा दिया, पीला कपड़ा पहना दिया तो एकदम कृष्ण जैसा उसको लगेगा। बलराम श्री कृष्ण का जो भाई बलराम, कृष्ण बलराम, बलराम का रंग कैसा है शरीर का? एकदम सादा है। कृष्ण का है घनश्याम और बलराम का है श्वेता। रंग का केवल परिवर्तन है परंतु शकल एकदम एक है। तो ऐसे भगवान जब अपने आप को विस्तार करते हैं, वो भगवान ही अपने आप को, वो सारे रूप जो है वो सारे भगवान, जैसे हर प्राणी के दिल में भगवान विराजमान है ना? कैसे विराजमान है? किस रूप में? परमात्मा के। जीव है जो है वो है आत्मा और भगवान है परम आत्मा। तो ये परम आत्मा का परमात्मा, और यद्यपि भगवान हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान है फिर भी भगवान स्वयं और उनमें कोई अंतर नहीं है। परमात्मा और स्वयं भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं, परमात्मा रामचंद्र में कोई अंतर नहीं है, परमात्मा विष्णु और विष्णु में कोई अंतर नहीं, एक ही स्वयं भगवान। यह है स्वांश प्रकाश। और भगवान का विभिन्न अंश कौन है? हम सब भी भगवान का अंश है परंतु हम विभिन्न अंश हैं। इसका अर्थ यह होता है कि हम बहुत छूट रहे परंतु गुण भगवान का जैसा ही, भगवान सच्चिदानंद है हम भी सच्चिदानंद, जैसे आग और चिंगार, चिंगार भी आग है परंतु जब चिंगार जब आग से निकल जाता है तो उसमें आग वो फिर क्या आग रहता है? नहीं, वो बुझ जाता है, वो आग का जो अग्नि शक्ति जो है वो खो बैठता है। जैसे चिंगार जब आग से निकलकर भस्म में गिरता है तो भस्म बन जाता है ना कि चिंगार रहता है? नहीं, वो चिंगार नहीं रहता है, वो भस्म हो जाता है। वैसे ही हम सब जब भगवान से छोड़ जाते हैं और इस भौतिक जगत में गिर जाते हैं तब हम हमारे जो आध्यात्मिक गुण जो है जैसे सत चित आनंद, वो गुण हम खो बैठते हैं, खोकर इस भौतिक जगत का गुण ग्रहण कर लेते हैं और अपना आत्मिक स्वरूप को भूलकर हम ये भौतिक ये शरीर को अपना स्वरूप समझना शुरू करते हैं। असल में हम शरीर हैं, ये शरीर क्या हमारा स्वरूप है? नहीं, हमारा स्वरूप में हम सब क्या है? हम आत्मा है। ये शरीर जड़ है, पंचभूत से बना हुआ है, मिट्टी पानी अग्नि वायु और आकाश। और ये शरीर हमारा आत्मा का ही एक आवरण है। शरीर एक यंत्र है जिसमें बैठकर आत्मा इस भौतिक जगत में यहां से वहां जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है और अभी नीचे गिर रहा है। तो कोई जिक्र जो है वो क्या उस व्यक्ति का स्वरूप होता है? जैसे आप जब आपका गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी ये यंत्र है परंतु आप चला रहे हैं, और जब आप गाड़ी से निकल जाता है तो गाड़ी चल सकता है? नहीं चलता है। वैसे ही जब तक आत्मा शरीर रहता है तो ये शरीर में जीवन रहता है, जब आत्मा शरीर छोड़कर चला जाए तो आत्मा का मृत्यु होता है, मतलब आत्मा में जीवन शरीर में जीवन नहीं रहता है। जय श्री राधा मनोहर बोल प्रेमान।